ओम शांति। रामायण में दिखाया है सीता शोक वाटिका में पहुंच गई। कैसे? ऐसा क्या हो गया? आकर्षित हो गई और क्या हुआ? लक्ष्मण रेखा पार करती और क्या हुआ? सीता जो कि राम के पास थी वो रावण तक पहुंच गई, सुख धाम से दुख धाम पहुंच गई। एक ही प्रश्न है, ऐसा क्यों हुआ? और सीता के उस दुखधाम तक पहुंचने के सात कारण हैं। जिनको अपनी डायरिया लेनी है ले ले, उसके भी पहले शास्त्रों में एक कहानी का वर्णन है जिसमें एक सन्यासी एक जंगल में बैठकर तपस्या कर रहा है, ध्यान मग्न है, युवा है, तेजस्वी है, ब्रह्मचारी है। जंगल बहुत सूना है, कोई नहीं है, एकांत में बैठकर तपस्या करता है। और उसी जंगल में एक दिन एक ऋषि कन्या आ जाती है और वो ऋषि कन्या उस तपस्वी को देखती है और उसकी ओर आकर्षित होती है। उसके मन में आता है कि मैं इस तपस्वी की सेवा करूं, पर उसके मन में ये भी है कि मुझे इसका तप भंग नहीं करना है। इसके लिए चुपचाप उसकी सेवा करती है, उसके लिए जल ला के रखती है, फूल सजा के रखती है, फल रख देती है, कभी कभी चुपके से देखती है, ये ध्यान रखती है कि वो मुझे न देखे। और उस तपस्वी की तपस्या बढ़ रही है और तीव्र हो रही है, पर ये कन्या दिखने में बहुत कुरूप है। और जैसे शास्त्रों में दिखाता है, धरती पर कोई भी तपस्या करता है उधर इंद्र का सिंहासन डोलता है। बहुत इनसिक्योर प्राणी है इंद्र, ऐसा दिखाया है। उसे बहुत चिंता होती है, वो एक युक्ति रचता है। और कन्या जिस सरोवर में जाती और मूड होती है, अचानक इंद्र ऐसा जादू करता है कि वो बहुत रूपवती बन जाती है। और वो कन्या उस तपस्वी की सेवा करती रहती है। धीरे धीरे तपस्वी की तपस्या बढ़ रही है। अब वो कम से कम चीजें खाता है, फल, और फिर धीरे धीरे कभी कभी दो दो दिन ध्यान मग्न है और बीच में उठता है। और एक दिन जब अचानक उसकी आंख खुलती है, वो ध्यान मग्न देखता है, वो कन्या वहां फल रख रही है। वो उस कन्या को देखता है और फिर आंखें बंद कर देता है। वो कन्या वहां से लौट जाती है, उसमें आत्मग्लानी का भाव आ जाता है कि मेरी वजह से उसकी तपस्या भंग हुई है, शायद उसने मुझे देख लिया है। रात भर सो नहीं पाती, परंतु उसे खुशी भी होती है एक तरफ कि उसने मुझे देखा, इसकी खुशी। उसे पता तो चला उसकी सेवा कौन कर रहा था, परंतु आत्मग्लानी का भाव बहुत ज्यादा है। और सुबह होते होते वो उस जंगल को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है, क्योंकि मेरी वजह से किसी ब्रह्मचर्य की साधना भंग ना हो, ये विचार उसके मन में आता है और वो हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। तपस्वी अपनी तपस्या में मगन है, अब तो तपस्या को और अधिक तीव्र कर देता है, सब कुछ खाना बंद कर देता है, केवल वायु। और जैसे दिखाते हैं पूरा मिट्टी का ढेर उसके ऊपर लग जाता है। इतनी तपस्या आज तक किसी ने की नहीं होगी, ऐसी घोर तपस्या में लग जाता है। ऊपर सिंहासन डोलता है इंद्र का, और इंद्र फिर नीचे आते कहते हैं, मैंने आज तक ऐसी तपस्या करते किसी को नहीं देखा। तुम्हें चाहिए क्या, मांगो क्या, तुम्हें इंद्रासन चाहिए, स्वर्ग का सिंहासन चाहिए, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, लो। वो तपस्वी कहता है मुझे स्वर्ग का सिंहासन नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो फिर तपस्या किस लिए कर रहे थे? क्या संसार की कोई चीज चाहिए प्राप्ति? वो कहता है मुझे संसार की कोई चीज नहीं चाहिए। इंद्र कहता है फिर तुम्हें चाहिए क्या मुक्ति, मोक्ष? मैं तुम्हें देख सकता हूं, बोलो अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए तो। वो तपस्वी कहता है मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। मोक्ष भी नहीं चाहिए, फिर चाहिए क्या? वो तपस्वी कहता है वो कन्या कहाँ है, वो कन्या कहाँ है? कहानी पूरी हो गई। इच्छाएं और वासनाएं बहुत बहुत सूक्ष्म है। जिस इच्छा ने और जिस तृष्णा ने अंदर घर कर लिया वो अंदर ही बैठी रहती है, फिर चाहे बाहर कितनी भी तपस्या कर रही है आत्मा। सारी तपस्या करने के बाद भी उसका जो ख्याल था, उस कन्या को एक बार देख क्या लिया, वो विचार अब तक मन से नहीं गया। मनुष्य मन, स्त्री या पुरुष कोई भी, एक बार कोई इच्छा उसमें समा जाए, उसको निकालना बहुत मुश्किल है। जब तक उसकी संपूर्ण व्यर्थता का ज्ञान ना हो जाए तब तक, नहीं तो वो अलग अलग रूपों से अलग अलग समय में प्रकट होती रहती है। एक बहन का लंबा मैसेज आया था कुछ समय पहले, अभी अभी समर्पण हुआ, 6 मास हुए शांतिवन में। बहुत कुछ लिख रही थी, आई वॉन्ट टू डांस, आई वॉन्ट फिजिकल टच, आई वॉन्ट टू डांस लाइक अ मैड मैन, आई नीड सपोर्ट। ऐसा लगता है कि कोई सपोर्ट चाहिए, ऐसा लगता है कि कुछ खोया खोया है, पर मुझे घृणा भी है काम विकार से। आई फील डिप्रेस्ड, आई कांट स्लीप, दिन भर बिजी रहती है सेवाओं में पर बेचैन है। बचपन से ज्ञान में है, बट आई वॉन्ट टू मीट माई कॉलेज फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू गो टू पार्टी, आई वॉन्ट टू ड्रिंक बियर, ये सारी इच्छाएं। कॉलेज लाइफ की सारी इच्छाएं दब गई, माँ बाप ने ब्रह्मा कुमारी बना दिया जो थी बचपन से, पर वो संसार की भी बहुत इच्छाएं थी। और अब वो सारे दोस्त याद आ रहे पुराने कॉलेज के, और अभी अभी समर्पण हुआ है, उसके बाद ये सब और बढ़ गया है। क्या किया जाए, इतनी सूक्ष्म है ये सारी बातें। बाहर सेवाएं चल रही है, फोटो, इसका सत्कार उसका सत्कार, यहां प्रोग्राम वहां प्रोग्राम, स्पीकर है, हाईली एजुकेटेड है, इंग्लिश में भाषण करने वाली बहन है। बीच में अस्पताल में भर्ती थे, और ये कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, असंख्य व्यक्तियों की है। बीमारियां है शरीर की, पर रिपोर्ट सब नॉर्मल है, पर कुछ कुछ हो रहा है, पर रिपोर्ट्स में कभी कुछ नहीं आता। शायद बीमारी शरीर में नहीं, मन में है, छिपी हुई इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, और सीधा ब्रह्मा कुमारी बन गए और सेवाएं चालू कर दी, और कुछ कुछ अंदर छिपा रह गया, और फिर वो सुनामी की तरह प्रकट होता है 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद। और फिर कोई सपोर्ट चाहिए, कोई आधार चाहिए, कोई कंधा चाहिए जिसके पर सर रख के रोऊं क्यों ऐसा हो रहा है। अशोक वाटिका से शोक वाटिका में क्यों चली गई सीता? 7 कारण है। पहला, आकर्षण। स्वर्ण मृग का आकर्षण हुआ सीता को। क्या उसे पता नहीं स्वर्ण का कोई मृग नहीं रहता, फिर भी आकर्षण हुआ। ब्रह्म ही ऐसा है कि आकर्षण होता है। एक सेंटर की बहन एक सहयोगी भाई जो कि मुस्लिम था, कभी कभी सेंटर में आता था, उसमें ही आकर्षण हो गया, उसी से प्यार हो गया। और इतना अधिक बढ़ गया कि एक दिन वो भाई की पत्नी बीवी सेंटर पर आई और कहा, मेरे पति को छोड़ो नहीं तो कोर्ट पुलिस केस कर दूंगी। फोन पर बातें, व्हाट्सएप कॉल्स, लंबी लंबी बातें, तुम्हारे गाल बहुत सुंदर है, तुम्हारे होठ बहुत सुंदर है, सेवाओं की चर्चा से शारीरिक चर्चा तक बातें। आकर्षण। क्यों आकर्षण? कार है, सेवाओं के लिए कहीं पर भी जा सकते कार में बैठकर, फोन करना है बस। नहीं चाहिए ऐसी कार, पैदल जाओ। नहीं चाहिए किसी के उपकार, झोपड़ी रहेगी तो चलेगी, नहीं बनाना है रिट्रीट सेंटर। किसी विकारी का पैसा नहीं लगना चाहिए सेवा केंद्र के निर्माण में, और ना ही किसी के हमको गुलाम बनना है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, 20 सेवा केंद्र है, उसमें से 10 हिल रहे हैं, क्या फायदा ऐसे केंद्र का। सेवा के मार्क्स दिए जाएंगे इससे नहीं किसने कितने भाषण दिए, कितने कितने सेंटर खोले। सेवा के मार्क्स देंगे दिए जाएंगे स्वयं शक्तिशाली कितने रहे और दूसरों को शक्तिशाली कितना बनाया। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। 1000 स्टूडेंट सब हिल रहे हैं। डायमंड हॉल में हम देखते हैं वर्तमान में जो लोग आ रहे हैं, बाबा का मिलन चालू है, बाहर जाकर सिगरेट पी के अंदर फिर आ रहे हैं। मांडव भवन में सेवाधारी लोग आते हैं सेवा करने, ओपीडी में आते हैं, डॉक्टर साहब सिगरेट छूटती नहीं। कौन कह रहा है? जो सेवा में आए हैं वो। ये सब बताने का अर्थ ये नहीं कि हम डरा रहे, परंतु ये सत्य है और सत्य को जानना है। बाद में ये नहीं कहना कि मुझे तो पता ही नहीं था। इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेस नन। यहां जो कुछ हो रहा है सब पता चाहिए कि ऐसा भी होता है, ऐसे भी लोग गिर रहे, इसलिए जानना है ताकि हम सावधान हो सके, अपने आप को सचेत कर सके। ऐसे भी गिरे हैं लोग। मधुबन में कितने उदाहरण है भाग कर शादी की। दादी प्रकाशमणि से 6-6 मास तक माफी मांगी, फिर माफ किया। आज भी ज्ञान में चल रहे दोनों, एक उधर एक इधर, पर बंधन में तो है ना। कहना तो पड़ता है ये मेरा युगल है। सो कॉल्ड गंधर्व विवाह, किसी का कुछ भी नहीं चाहिए। जिस सेवा केंद्र पर पवित्रता बहुत ज्यादा है, चरणों में पैसा आके गिरेगा। किसी के सामने भीख नहीं मांगनी है, किसी की कार नहीं चाहिए, किसी का सहयोग नहीं चाहिए। करे तो बहुत अच्छा, नहीं करे तो जाओ। क्यों हम किसी के पैसे से, किसी के स्टेटस से, किसी के घर से आकर्षित हो? सब माया है। सबसे पहला कारण आकर्षण, दूसरा कारण सीता के शोक वाटिका पहुंचने का इच्छा, मुझे ये हिरण चाहिए। पहले आकर्षित हुई और फिर नेक्स्ट स्टेप मुझे चाहिए। ये पर्स कहां से ली, एक्स्ट्रा है क्या? दादी जानकी कहते कोई विदेश जाए और वहां से कुछ ना लाए और वैसे ही आ जाए। दादी उसको कहती है निर्लोभी, ये खरीदू वो खरीदू, ये बैग ये पर्स ये सूटकेस, कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों इच्छा करे, भगवान सब कुछ दे देगा। और जो मांगना है उससे मांग लेना, अगर मांगना ही है। यहां तक कि दादी जानकी जब विदेश गई शुरुआत में, सेकेंड या थर्ड टाइम, वो बहनें बैठी थी और योग कर रही थी। दादी ने कहा क्या कर रही हो? उन्होंने कहा सेंटर की जगह के लिए योग कर रहे हैं। दादी ने कहा टाइम वेस्ट, अपने आप मिल जाएगी जगह जो भी मिलनी है, तुम अपने योग को इस काम के लिए मत लगाओ। ये तब की बात है 70s की। भगवान को सब पता है कहाँ किसको टच करना। हमें कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं, किसी से भी कुछ इच्छा करने की आवश्यकता नहीं है। ये मुझे चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज है, मुझे चाहिए, कहाँ मिलता है? सहज मिल जाए बहुत ठीक, पर उसके लिए पागल होना वस्तुओं के लिए, अपनी स्थिति छोड़कर सेवा करना संघर्ष उत्पन्न करेगी। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के 1987, सेवा वैराग दिलाने का साधन है, पर सेवा में ही वैराग नष्ट भी हो जाता है। क्योंकि सेवा से पहले तीन चीजें होनी चाहिए, नहीं तो वो सेवा संघर्ष का कारण बनेगी। त्याग, वैराग्य, तपस्या। बिस सेवा के पीछे ये तीन चीजें नहीं है। वहां पर नाम मान शान की इच्छाएं आएगी, तपस्या नहीं है, त्याग नहीं है, वैराग्य नहीं है, और सीधा सेवा में उतर गए। अभी अभी कोर्स किया, अभी अभी सेंटर पर आए और सेवा 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 सेवा, केवल सेवाओं का विस्तार है और कुछ नहीं, ना ज्ञान ना योग। ज्ञान की परिभाषा सुबह मुरली क्लास में मुरली सुना देना, बस हो गया। दिन भर में केवल सेवाएं, केवल सेवाओं का चिंतन। ज्ञान का कोई चिंतन नहीं है, ज्ञान का कोई मनन नहीं है, योग का चार्ट नहीं है। अभी हम एक सेवा केंद्र पर गए थे एक जगह, वहां के भाई ने बताया ये सेवा केंद्र 30 साल से निर्विघ्न चल रहा है। हमने कहा अच्छा कैसे? उन्होंने कहा यहां की जो बहन है उसका खुद का योग का चार्ट 4 घंटा है, और मैंने इतने सालों में आज तक एक बार भी नहीं देखा कि नुमा शाम का योग उसने मिस किया है। अमृत वेला तो छोड़ ही दो, नुमा शाम का। और ऐसे भी नहीं कि वो सेवा नहीं कर रहे, सेवा वो भी कर रहे, पर सारा ध्यान योग पर है, तपस्या पर है, और उसी अनुसार सारे स्टूडेंट भी है। और उस भाई ने मुझे बताया इस सेवा केंद्र पर 30 साल से मैं जा रहा हूं, एक भी विघ्न नहीं आया यहां पर। कितनी बड़ी बात है। और उस बहन की स्थिति इतनी ऊंची, इतनी शक्तिशाली और निर्मोही। तीसरा कारण सीता के अपहरण का, जिद। पहले इच्छा की और फिर इच्छा ने जिद का रूप कर धर लिया। जब उसको समझाया गया ये नहीं करो ये नहीं करो ये नहीं करो, जितना आत्मा को समझाया जाता है उतना वो और ज्यादा करती है। इधर भी ऐसा ही है, उस भाई से दूर रहो और उस भाई की तरफ आकर्षण बढ़ता है। रहते यहां है, कॉन्टैक्ट्स उधर मधुबन में रखे है, समस्या यहां की बता रहे हैं उसको, वो क्या करेगा वहां से बैठकर फोन पर बातें आधा आधा घंटा, किस लिए? व्हाट ही विल डू? पति मर गया है क्या जो पर पुरुष को अपनी समस्या बता रहे हैं, वो क्या करेगा या करेगी? भगवान है, निमित्त आत्मा है, स्टूडेंट है, सेवा केंद्र है, बस ये चार ही संसार है। इसमें किसी पर पुरुष को लाना ही नहीं है, डिस्टर्बेंस बढ़ेगा, वो उधर हम इधर। जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारा ही जन्म जन्म का हिसाब है। ना स्थान बदलेगा, ना व्यक्ति बदलेगा, ना परिस्थिति बदलेगी, तुम्हें ही बदलना है। बाबा की महावाक्य है, जिस स्थान पर हो वही रहेगा। सोचते हैं ये सेंटर छोड़ दूं, वो सेंटर पर जाऊं, वहां थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा, यहां एक रावण है वहां 10 बैठे हैं, ये भूलना नहीं है। एक बहन सेंटर पर ठीक से जमा नहीं, शांति बनाई, वहां ठीक से किसी डिपार्टमेंट में सेट नहीं हुई, शिव मनी ओल्ड एज होम, बूढ़ा घर आबू रोड में, वहाँ वहाँ नहीं जमा, वहाँ से ट्रॉमा हॉस्पिटल, वहाँ नहीं जमा, ऊपर से ग्लोबल हॉस्पिटल, वहाँ पर भी नहीं ठीक रहा, कहीं पर भी सेट नहीं हो रही है, अभी घर पर बैठी है। कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट है हर एक व्यक्ति के बारे में, हर नए स्थान पर नए लोगों के प्रति कंप्लेंट्स है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। कैसा समर्पण है, भगवान के घर और भगवान का बैच लगाकर लौकिक घर में बैठे। जिद है, मैं राइट हूं, ये सब गलत है, दीज आर ऑल क्रूएल पीपल, ब्रूटल, सब क्रूर लोग है ये, यहां बहुत पॉलिटिक्स है, ऐसी बातें करते हैं। और जब जिद का रूप धारण कर लेता है अहंकार, किसी की नहीं सुनती आत्मा, कितना भी समझाओ उसको, घंटों घंटों बैठ के बोलो। एक सेंटर की बहन है उधर हमारे लौकिक की तरफ, ब्रह्मा कुमारी को ही संस्था को ही छोड़ दिया, घर में बैठी थी तब कुछ साल पहले, वो कहती थी शिव बाबा पत्थर हो गया है, देखूंगी भी नहीं उसकी तरफ, घर पे जाओ तो दादी प्रकाशमणि के साथ फोटो, घर में गीता पाठशाला, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, ये सब छोड़कर कभी नहीं आऊंगी। हमने कोशिश भी की वापस, कम से कम बाबा मिलन में तो चलो, ना, पता नहीं क्या अनुभव उसको हो गए कठोर सेवा केंद्रों पर, शायद अब शादी कर ली, पता नहीं। मधुबन की ओम शांति भवन की स्टेज पर नाटक में भाग लिया है, दादियों की गोद में बचपन बीता है, आज है ही नहीं, इनको कौन सा ज्ञान समझाए हम, क्या ज्ञान समझा सकते हैं जिनका बचपन ही दादियों की गोद में बीता है, बचपन में डांस किया है स्टेज पर, तब से ज्ञान में है, और आज कहते हैं शिव बाबा कोई नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं उससे, पत्थर है वो पत्थर, शिव बाबा दगड़ झाला है। जिद, मैं राइट हूं। चौथी स्टेप अविश्वास। उधर से मारीच ने आवाज लगाई, राम राम, लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण, सीता कहती है जाओ लक्ष्मण, राम संकट में है, लक्ष्मण कहता है वो तो सारे जगत का पालन करने वाला है, सारी जगत का रक्षा करने वाला है, वो कभी संकट में हो सकता है क्या? पर सीता को अविश्वास हो गया है कि उसको कुछ हो गया है, वो संकट में है, जाओ तुम। लक्ष्मण समझाता है तो उसी को डांटती है, तुम कभी भी नहीं सुनते, पहले से ही ऐसे हो तुम। अविश्वास, भगवान पर अविश्वास। जीवन किसको दिया है? किसी देहधारी को नहीं दिया है, स्वयं भगवान को दिया है, वो ध्यान रखेगा, वो करेगा, उसे पता है मैं कहाँ हूं, क्या कर रही हूं, मेरे साथ जो कुछ हो रहा है सब कुछ उसके सामने है, दिखाया है बाइबल में, जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों के साथ जा रहा है नाव में गलीली की झील, और वो सोया पड़ा है, वो सारे 12 शिष्य नाव में है, नाव चल पड़ी और तूफान आ गया, नाव में हिल रहा है सारा पानी, समुद्र का उस झील का नाव में आ रहा है, और जीसस क्राइस्ट सोया पड़ा है, उसको पता ही नहीं, वो सारे शिष्य घबरा गए और फिर लास्ट में उनको ख्याल आया और उसके पास जाते, मास्टर, मालिक, हमारी रक्षा करो। इतने घबरा जाते, वो खड़ा रहता है, आकाश की तरफ हाथ करता है, पीस बी स्टिल, शांत, और वो तूफान शांत हो जाता है और फिर अपने शिष्यों से एक वाक्य कहता है, ओ ई ऑफ लिटिल फेथ, ए कम ईमान वालों, इतना भी विश्वास नहीं कि जिस नाव में मैं बैठा हूं वो डूबेगा। इतने घबरा रहे हो तुम, इस नाव में मैं खुद बैठा हूं और तुम कहते हो हमको बचाओ, इतने घबरा रहे। ओ ई ऑफ लिटिल फेथ, ये तुम्हारा विश्वास है, ये तुम्हारा ईमान है, क्या मैं तुम्हें डूबने दूंगा? फिर अविश्वास कैसा, और किस पर अविश्वास? जो सर्वशक्तिवान है, ये जीवन उसके प्रति है। अगला, रावण को, मारीच की आवाज को राम की आवाज समझना। एक बताया अविश्वास, दूसरा है राक्षस की आवाज को किसकी आवाज समझना, राम की आवाज समझना, माया की आवाज को राम की आवाज समझना, मन्मथ परमथ और परमथ को श्रीमथ समझ लेना। आवाज किसी और की थी, उसको लगा यह राम की आवाज है, लक्ष्मण ने पहचान ली कि यह राम की आवाज नहीं है, पर वो कहती है राम की ही आवाज है। अंदर से रावण बोलता है, हमको लगता है श्रीमत है, श्रीमत नहीं है वो। ये कैसे पता चले कि ये बाबा की टचिंग है या मेरी अपनी मत है, ये कैसे पता चले? तीन चीजों से, बाबा की टचिंग है, मेरी अपनी विचार है। सबसे पहला, अगर बाबा की वो टचिंग है तो बहुत ज़्यादा स्पष्ट होगी, ये एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने ये उत्तर दिया। विदेशियों ने बाबा से प्रश्न पूछा था, बाबा ये कैसे पता करें कि आपकी टचिंग है या हमारी अपनी मत? बाबा ने कहा उसकी तीन निशानियाँ। सबसे पहले, अगर वो भगवान की टचिंग है तो इतनी स्पष्ट होगी कि उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्लैरिटी। दूसरा, बहुत पावरफुल होगी वो टचिंग। वो टचिंग कैसी होगी? बहुत शक्तिशाली होगी। और तीसरा, तीसरे की परख तो वो चीज होने के बाद ही होगी, जो टचिंग होगी वो हमेशा सक्सेसफुल होगी, सफलता होगी उसमें। सी पी एस, क्लैरिटी, पावरफुल, सक्सेसफुल, ये तीन चीजें बाबा ने बताई थी। अगर ये तीन चीजें हैं तो समझना ये भगवान की टचिंग है, वरना हम सोचते हैं हमको बाबा की सुबह सुबह टचिंग हुई, ये करना चाहिए, वो करते और फेल हो गए, वो बाबा की टचिंग थी नहीं, तुम्हारी अपनी थी। तो राम, मारीच की आवाज, राक्षस की आवाज को राम की आवाज समझ लेना। वो जैसे हंसी की बात, श्रीमत को अपने अनुसार मॉडिफाई करते हैं। नया नया परिवार ज्ञान में आया, होटल में गए, शादी थी, तो बाहर का सब खाने का, प्लेट में समोसा आया, तो वो भाई समोसे के अंदर का आलू बाहर निकल रहा था। उसको पूछा क्या हुआ, उसने कहा हम अंदर का खाते बाहर का नहीं खाते, केवल आलू खाएंगे, ये जो बाहर का है ना वो नहीं खाते हम। मॉडिफाइड श्रीमत, श्रीमत को अपने अनुसार मॉडिफाई करना। भगवान ने कहा है मुरलियों में, जो मिलिट्री वाले हैं वो पाव रोटी खा सकते हैं। मिलिट्री से रिटायर होके 5 साल हो गए, अभी भी पाव रोटी खाना चालू है। वो मजबूरी की बात कही थी। उस दिन मुरली में एक बार आया था, हम ज्ञान सरोवर में क्लास करा रहे थे, तो मुरलियों में आया था कि आम चुरा के नहीं खाना है, कोई कोई बच्चे चोरी करके खा लेते। बाबा ने खरबूज के बारे में तो कहा ही नहीं है, हम तो खा सकते हैं ना। श्रीमद को घुमा फिराना, गोल 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 गोल, अपने अनुसार उसको ठीक ठाक करना। इसको कहते हैं फिलॉसॉफी ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा जनक श्रीमत। श्रीमत इज श्रीमत, माय वे और यूअर वे नहीं है, द वे है वो। ये बोल दिया मतलब बोल दिया बस। अब ये सब प्रश्न कहाँ से आ गए? थोड़ा कर सकते हैं क्या, ज्यादा कर सकते हैं क्या? अगला, रावण को न पहचानना। सिक्स्थ, रावण को न पहचानना, क्योंकि रावण किस वेश में आता है? ब्राह्मण के वेश में। रावण किस वेश में आता है? श्वेत वस्त्र और बैच लगाकर। एक बड़ी बहन जी सेंटर की किसी छोटी बहनों को बता रही थी, ये चित्र देखो। वो चित्र था, रावण सोया है, ऊपर से ब्रह्मा कुमारी अमृत डाल रही है, नीचे से निकल रहा है। वो कहती है इसके बारे में कुछ बताओ। वो कहती है हमको क्या, ये तो हम रोज बताते कोर्स में, इसमें क्या नया क्या है? बहन जी ने कहा ध्यान से देखो, वो जो कुंभकर्ण है उसको बैच है, स्पेशल चित्र बनाया था बैच वाला कुंभकर्ण। वो ब्राह्मणी है जो सोया पड़ा है, जिसके एक कान से अमृत जा रहा है और इधर से निकल रहा है। बाहर के लोग नहीं है, हम ही सोए हैं। और हमारे सामने माया भी ब्राह्मणों के द्वारा ही सबसे ज्यादा आती। दुनिया वाले कुछ कह दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ही ज्यादा शक्ति आ जाती है, पर कोई ब्राह्मण कह दे तो गॉन, फुस, हवा ही निकल जाती है। ब्राह्मणों के संकल्प बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत पावरफुल, हर्ट कर देते एकदम। कोई बहन रुकी है मधुबन में, किसी ने बोल दिया ये बहन अब तक क्या कर रही है मधुबन में, अब तक गई क्यों नहीं, धर्मशाला समझ के रखा है क्या? तीर एकदम अंदर, आर पार, पहचानना है। महामूर्ख देखना है, महाज्ञानी देखना है तो इसी परिवार में देखो, और महामूर्ख भी देखना है तो यहीं देखो, जहां सब कुछ मिल गया और उसके बाद भी व्यर्थ में लगे हैं। आज ये पार्टी कल वो पार्टी, आज ये पार्टी ये वोट पार्टी, पार्टी 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 पार्टी, मोबाइल खरीदा पार्टी, गाड़ी खरीदी पार्टी, सब मधुबन में पार्टी 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 पार्टी, इसकी पार्टी उसकी पार्टी इसकी पार्टी, इधर भोजन उधर भोजन, इधर भोजन उधर भोजन। और तपस्या कहाँ है? तपस्या व्यर्थ, व्यर्थ में लगे हैं। तो रावण को पहचान रहे हैं, और हमारे लिए रावण यहीं पर है, इन्हीं ब्राह्मणों के रूप में। उन आत्माओं का संग करना है जो तीव्र पुरुषार्थी है, जिनको ज्ञान और योग में रुचि है। सेवाओं के जंगल में खो नहीं जाना है, और ये नहीं भूलना है कि सेवा इज द फोर्थ सब्जेक्ट। हॉस्पिटल में एक भाई एडमिट थे, दिन रात सेवा की उसने, इतनी सेवाएं की सुबह से लेकर रात तक, दिन रात सेवाएं, पर ज्ञान योग के लिए कभी टाइम नहीं था। और जब लास्ट में बीमार पड़ा, हॉस्पिटल में एडमिट था, तीन चार दिन सेवाधारी था, फिर वो सेवाधारी गांव चला गया किसी काम से, सेवाधारी दो दिन मिल नहीं रहा था, इतना दुखी हो गया वो भाई, कहने लगा अगर मैंने शादी कर ली होती तो आज पत्नी और बच्चे होते देखने के लिए। ये विचार चालू हो गए। एक वो भाई समर्पित जिसने अपना सारा जीवन सेवाओं में लगा दिया 30 साल, और अब विचार कोई भी नहीं है मेरा, और इसी दुख में एक दिन शरीर छोड़ा। हम BSCS में थे, एक सेंटर की इंचार्ज बहन, कैंसर फैला हुआ, इतनी चिड़चिड़ापन, इतना चिड़चिड़ापन, बाबा वगैरह कुछ नहीं, कितने पता नहीं सेवा केंद्र खोले होंगे, कितनी कन्याओं को तैयार किया होगा, पर जब कैंसर और ये सब हो गया, इतनी चिड़चिड़ी, इतनी चिड़चिड़े, लास्ट टाइम जब मरने का समय आया, मसाला डोसा खाना है, मसाला डोसा खाते खाते शरीर छोड़ दिया। शिव बाबा वगैरह कोई नहीं था वहां, किसी की याद नहीं थी, सारी बुद्धि शरीर की तरफ और खींच रहा था शरीर, और इतना चिड़चिड़ा, हर एक को डांटना, हर एक से कुछ ना झगड़ा, बैठे बैठे ही बेड पर। क्यों, कहां चला गया, कहां चली गई तपस्या, योग? और एक तरफ हमने दादियों को देखा है, कुंज दादी, शांतामणि दादी, मनोरिंद्रा दादी, कैसे इन लोगों ने शरीर छोड़ा, कैसे इनकी हालत खराब थी, इधर प्रिक कर रहे उधर प्रिक कर रहे, शरीर से डिटैच्ड, कोई मतलब नहीं, इधर प्रिक इधर प्रिक, पूछते भी नहीं। हम पूछते थे दर्द हो रहा है क्या, दादी कहती थी कुछ नहीं हो रहा। पालू दादी कितना देह से डिटैच थी ये सारी की सारी, और कितना बाबा 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 बाबा, एक तरफ ये और दूसरी तरफ असंख्य ब्राह्मण आत्माओं को हमने अपनी आंखों के सामने शरीर छोड़ते हुए देखा है। कितनी बहनें, ब्रेस्ट कैंसर पूरे शरीर में फैला हुआ, दर्द में फिर भी बाबा की याद में, और कुछ कुछ आत्माएं थोड़ी सी बीमारी, परंतु इतना चिड़चिड़ापन, कोई याद नहीं, कुछ नहीं, जीरो बिल्कुल। तो छठवां कारण सीता के अपहरण का, रावण को ही नहीं पहचान पाए कि यही रावण है। डायग्नोसिस करते आना चाहिए, ये काम है, ये क्रोध है, ये मोह है, मुझे इससे हटना है। मधुबन में हमने देखा दो बहनें बैठी थी, एक इधर बीच में भोजन की थाली, वो उसको खिला रही है, वो उसको खिला रही है, प्यार, आपसी प्रेम, प्रेम या मोह, बहनों बहनों का आपस में मोह, साथ में मधुबन, साथ में मुरली क्लास, साथ में अमृतवेला, साथ में नक्की राउंड, साथ में भोजन, और भोजन में भी वो इधर वो इधर वो इधर वो इधर, प्रेम। पवित्र प्रेम। लास्ट, अब तक भी ठीक था, अब तक भी सीता सुख में थी, पर लास्ट एक ऐसी स्टेप उसने कर ली कि बस गई, लक्ष्मण रेखा को पार कर लिया। इसलिए ब्राह्मण ब्रह्मा कुमारी जीवन की जितनी मर्यादाएं हैं वो सब रिवाइज करते रहना है। इसलिए हम चाहते हैं ऐसे कुछ सेंटर्स हैं जहां पर मास में एक बार सारी बहनें मिलती हैं और उनकी एक दिन भट्टी होती है। बहुत सारे सेवा केंद्रों पर ऐसा हुआ है, चालू है, मास में सारी बहनें एक जगह आती है, आधे दिन की भट्टी, 8 o'clock सुबह से चालू करते हैं, कोई एक बहन मुरली सुना देती है, स्टूडेंट चले जाते हैं, वो आते हैं, फिर 2 घंटा योग, 1 घंटा बड़ी बहन जी क्लास, फिर भोजन और फिर योग, और फिर दोपहर को सब बहनें अपने अपने सेंटरों पर चली जाती है। हाफ डे भट्टी वंस अ मंथ, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा, या अपने छोटे छोटे स्थल तल पर भट्टी, हर संडे भट्टी, कुछ कुछ सेंटरों पे एवरी संडे भट्टी होती है, सुबह 8 से 12 और फिर 4 से 8 सुबह और शाम, जिसको आना है वहां के बैठते और जाते हैं। सेवाएं बहुत कर रहे, योग चाहिए, योग तपस्या का वायुमंडल चाहिए, वो योग ही खींचेगा आत्माओं को, नहीं तो किसी किसी सेंटर पर इतनी सेवाएं है वहां योग का नाम निशान नहीं है, बिल्कुल कोई योग नहीं है, किसी को टाइम ही नहीं है, आधी बहने किचन में है, आधी बहने फोन पर है, आधी ऑर्गेनाइजिंग में लगी हुई है, आधी डेकोरेशन में लगी है, कोई योग नहीं है, योग का सवाल ही नहीं है कुछ, कोई मेहमानों की मेहमान नवाजी में लगी है, बस ऐसे दिन गुजरते जा रहे हैं। और कहीं कहीं हमने देखा है इतना जागरण है योग के बारे में, तो ऐसे 7 कारण है, आकर्षण, इच्छा, जिद, अविश्वास, पहचान, आवास को पहचान नहीं सकना, रावण को न पहचान सकना कि सामने जो आया वो रावण है, ये ब्राह्मण नहीं है, ये साधु नहीं है, और माया महाठगनी हम जानी, माया जब भी आएगी रूप बदल कर ही आएगी, और लास्ट मर्यादा की लकीर को क्रॉस किया और रावण सीधा किडनैप करके अपनी लंका में ले गया। तो सभी ब्रह्मा कुमारी बहनों का जीवन बहुत अमूल्य जीवन है, अपने इस जीवन को हमने बहुत श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया है, इसमें सहन भी बहुत करना है। ओखली में सर दिया तो मुसलों से क्या डर, प्यार किया तो अब डरना क्या, आगे तो बढ़ना है, परंतु अटेंशन, जागरण, योग, तपस्या, भट्टी, खुद की भट्टी खुद, ताकि हम अपने आप को शक्तिशाली बाबा के सामने रख सके और बाबा को हम पर नाज हो। ओम शांति।